अहतकाफ भी फंस। तो आज रात यहाँ दारलूम टेक्सास में एहतकाफ भी था और इज्तिमा भी था, और बस अब साथ ही हम यहाँ फजर के बाद मुराकबे में यहाँ सारे साथी बैठे हैं। पिछली मजालिस के अंदर हमने गुफ्तगू की कि अल्लाह के प्यारे महबूब ने चंद लोगों के बारे में फरमाया कि कायनात के सबसे बेहतरीन लोग, उसमें से एक वो शख्स कि जो दूसरों को खाना खिलाता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कायनात का बेहतरीन शख्स। एक वो शख्स भी है कि जिसका सलूक अपनी बीवी से अच्छा, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये भी कायनात का बेहतरीन शख्स। एक और शख्स के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये बेहतरीन शख्स, और ये वो कि जिसने खूब तौबा की। एक और शख्स के बारे में अल्लाह के प्यारे महबूब ने फरमाया कि ये भी कायनात का बेहतरीन शख्स है, और ये वो है कि जिसने दूसरों को अच्छे अखलाक दिए। एक और शख्स के बारे में अल्लाह के प्यारे महबूब ने फरमाया कायनात का बेहतरीन शख्स है, और ये वो है कि जिसको अल्लाह ने उम्र लंबी दी और उसने लंबी उम्र अल्लाह की इबादत में गुजार दी। कल के मजलिस में हमने एक और शख्स का तस्करा किया, ये पिछले 2-3 दिन से एक और शख्स का तस्करा कर रहे हैं, और ये वो शख्स है जो लोगों को दावत देता है दीन की। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमा दिया वमन अहसन कौलन मिम्मन दआ इला अल्लाह, कि उस शख्स का कौन बेहतर हो सकता है, किसकी बात उससे बेहतर हो सकती है उस बंदे के मुकाबले में जो अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाता है। तो दावत देने से मुतालिक हमने ये अर्ज किया कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दीन की अगर कोई एक बात भी पता है वो भी आगे तक पहुंचा तो दावत देना खैर से खाली नहीं है, बल्कि सच्ची बात यह है कि जो दीन की दावत नहीं देगा वो खसारे में जाएगा। और अल्लाह ने कुरान में वादा करके फरमा दिया, कसम खा के फरमाया वल असरी इन्नल इंसान लफी खुसर, ये कसम है वक्त की कि इंसान नुकसान में है सिवाय 4 किस्म के लोग। एक जो ईमान लाता है, एक जो नेक अमल करता है, और जो हक बात की दावत देता है, और जो सबर की दावत देता है। तो जो दावत नहीं देगा वो फंसेगा। मगर दावत के अकाबरीन ने ये फरमाया कि दावत के अंदर एक ढंग होना चाहिए। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमा रहे कि दावत देनी भी है तो हिकमत के साथ दी जाए। वो दुओ इला सबीली बिल हिकमत मौइज़तुल हसना, हिकमत के साथ भी दी जाए और अच्छा बयान किया जाए, अच्छा वाज किया जाए। तो अब सवाल ये पैदा होता था कि जी हिकमत कहाँ से नसीब होती है, और उसका जवाब मशाइख ने ये दिया कि हिकमत जो है वो मशाइख की सोबत से आती है। वैसे हिकमत तो 3 चीजों से आती है, इल्म से भी हिकमत आती है, तकवा से भी हिकमत आती है, अल्लाह वालों की सोहबत से भी आती है। मगर जो शख्स अल्लाह वालों की सोहबत अख्तियार करता है उसको इल्म और तकवा भी नसीब हो जाता है। इसलिए हिकमत की जो जगह है वो अल्लाह वालों की सोहबत है। और पिछले 3-4 दिन से जो हमारी मजालिस हो रही है उसमें हम अल्लाह वालों की सोहबत के फवायद बयान कर रहे हैं। अल्लाह वालों की सोहबत का एक फायदा ये है कि जो शख्स नेक लोगों की सोहबत में रहता है उसको नेक आमाल पर इस्तकामत नसीब हो जाती है। ये जो चीज होती है ना कि तो नहीं किया बहुत दिनों तक आमाल छिपे रहे फिर आमाल कर लिए, तो ये नेक लोगों से जब रहा होता है, बल्कि शेख है इसी तरह दो शख्स शेख से रहा रखता है वो गुनाहों से पाक जिंदगी गुजारने में कामयाब हो जाता है। नेक सोच की बड़े जबरदस्त असर है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अलमरउ अला दीनी खलीली, इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है। तो जब कुर्बत ऐसे शख्स से है कि जिसकी जिंदगी में गुनाह नहीं, गुनाह से पाक जिंदगी गुजार, शेख के साथ निस्बत का एक और फायदा भी हमने बयान किया, और वो इससे इंसान को मकाम मिलता है। इस हवाले से हमने ये भी अर्ज किया कि सहाबा कराम को मकाम ऐसा मिला, इस उम्मत के जितने बड़े बड़े औलिया हैं, एक अदना सा सहाबी भी उनसे अफजल है। यानी ऐसे भी सहाबी गुजरे हैं जिन्होंने एक भी नमाज नहीं पढ़ी और फौत हो गए, कितनी थोड़ी देर के लिए सहाबी थे, मगर उलमा ने लिखा कि ये वाले सहाबी भी बड़े से बड़े वलीउल्लाह से ज्यादा अफजल है। इसकी वजह यह है कि उनको सोहबत ऐसी मिली है, तो पता चला कि सोहबत से इंसान को मकाम मिलता है। हमारे सिलसिला के बुजुर्ग गुजरे हैं हजरत ख्वाजा सिराजुद्दीन रहमतुल्लाह, उनका एक खादिम था। तो खादिम जो था वो अनपढ़ था, दुनियावी तालीम भी नहीं थी, दीनी तालीम भी नहीं थी, जैसे कुरान पाक पढ़े होते ना वो भी नहीं था, मगर हजरत से मोहब्बत उसको बहुत थी, तो खूब खिदमत करता था। तो हजरत से मिलने वाले मेहमान आते थे, उनके लिए खाना लगाता था, हजरत जो भी काम कह देते कर देता, कभी कभी घर के काम भी कर देता, बकरियां कुछ थी वो भी चरा देता, इस तरह से जो बस उसको बड़ी मोहब्बत थी। तो नाम तो उसका फतेह अली था, मगर क्योंकि ऐसा खादिम सा था तो लोग उसको फतू कहते थे कि फतू ये ले आ, फतू चाय ले के आ, तू खाना लगा, फतू ये कर, हजरत भी कहते थे फतू यूं करो तो फतू वो करो। फतू साहब को बहुत ज्यादा हजरत से कि बस ये अल्लाह के वली, उसके दिल में ये पक्का था कि ये अल्लाह के नेक बंदे हैं। तो दिन रात उसने हजरत की खिदमत में लगा दी, अल्लाह हजरत की जो मस्जिद और जो सारा मदरसे का जो एरिया था ना, उसमें पहाड़ी इलाका था, तो पहाड़ से पानी आता था, तो जितना भी एरिया था आधा जो है ना वो पानी के नीचे हो जाता था और आधा जो है वो इस्तेमाल में आ जाता था, तो जगह थोड़ी रह जाती थी। मेहमानों का आना, बड़े बुजुर्ग थे, पूरे मुल्क से बहुत लोग आते थे, मुल्क के बाहर से भी आते थे, तो कई मरतबा जगह कम पड़ जाती थी। और फत्तू जो था वो बड़ा जबरदस्त खादिम भी था। खादिम दो किस्म के होते हैं, एक वो खादिम होता है ना जो आपने जिसको जो काम किया कहा उसने कर दिया, एक है जो काम ढूंढता है कि जी क्या काम है ऐसे जो राहत पहुंचा सकते हैं। ये फत्तू ऐसे खादिम था, उसने खुद ही सजेशन दिया हजरत को, हजरत ये पहाड़ में से पानी आता है, ये हमारी सारी जमीन को जो है वो जेरे आब ले आता है। तो मैंने बहुत सोचा है मगर मुझे समझ नहीं आ रहा, एक ही हल समझ आ रहा है कि पहाड़ को थोड़ा सा काट दिया जाए तो पानी का रुख दूसरी तरफ हो जाएगा, तो ये इतनी जो जमीन है ये बच जाएगी। अब ये आज से 100-150 साल पहले,
जी
तो 100-150 साल पहले तो इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी, पहाड़ काटना तो बहुत मुश्किल काम था, तो ये मॉडर्न मशीनरी कोई थी नहीं। तो उसने कहा हजरत फिर ये पहाड़ काटने को शुरू किया जाए, चलो करके देख लो, देखा जज्बा है तो जज्बे को मना भी नहीं किया जाए, कभी कभी जज्बे वाले सालिक नहीं होते तो शेख फंस जाते हैं, क्योंकि काम करने होते हैं काम हो नहीं रहे होते, कभी कभी ज्यादा जज्बे वाले सालिक होते तो भी शेख फंस जाता है कि आप जबरदस्ती काम जो है ना करवाने पड़ते जिसकी जरूरत भी नहीं पड़ती है। तो बहरहाल अंदर फरमाया ठीक है करके देख लो। अब सारे मजाक उड़ाते थे कि फत्तू फत्तू पहाड़ तोड़ने गया है, फत्तू पहाड़ तोड़ेगा, तो वो बेचारा लगा होता कुदाल लेके कभी इधर मार रहा है तो कभी उधर मार रहा है। अब फत्तू तो फत्तू था तो सब फत्तू से मजाक भी कर लेते थे कि बड़ा आया पहाड़ तोड़ने वाला, तो बड़ा इसको कुछ ये शौक है, मगर ये लगा हुआ था कि जी हजरत का ये काम है, मैंने कोशिश करनी है, अल्लाह ने मदद कर दी है। काफी साल लग गए, थोड़ा थोड़ा करके तोड़ता था, सब मजाक ही उड़ाते थे, कोई किसी ने पहाड़ों को भी तोड़ा है, मगर अल्लाह की शान, जो मोहब्बत का जज्बा है, ये जीत गया। पर एक वक्त आया वाक्यतन पहाड़ इतनी कट गई कि पानी का रुख दूसरी तरफ हो गया, और ये जमीन जो थी ना सारी रिक्लेम्ड हो गई, तो बहुत सारी जमीन। अब उसको तो शौक, दिमाग में उसकी वही फिक्रें घूम रही होती थी जो हजरत के दिमाग में घूम रही होती थी। उसने कहा सर जल्दी से यहाँ पे कुछ है ना बना लेते हैं, कमरे शमरे जो मेहमान आते हैं उनके रहने का बंदोबस्त। मैंने कहा शुरू करो, तो मिस्त्री मजदूर आए और उन्होंने लगाना शुरू किया। ये भी मिस्त्री मजदूर के साथ लगा हुआ है बड़े जज्बे के साथ। गर्मियों के दिन थे तो काम के जो घंटे थे ना वो फजर के बाद ही शुरू हो जाते थे, जब 10-11 बजते हैं तो धूप और गर्मी इतनी होती है कि सारे जो है वो रुक जाते, और फिर असर के करीब फिर काम शुरू होता। तो ये सुबह भी इनके साथ लगा हुआ होता, और जब ये सारे लोग सारे मिस्त्री मजदूर आराम में बैठे हुए होते, ना ही सो रहे होते, तो ये उस वक्त गारा तैयार कर लेता। जब ये उठेंगे तो बस गारा तैयार होगा, तो जल्दी जल्दी होगा, इज्तिमा से पहले पहले ये कमरे बन जाने चाहिए, मेहमानों ने आना है। तो हजरत ने एक मरतबा देखा कि सारे सो रहे हैं, जितने भी सालिकीन आए हुए हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सब सो रहे हैं, मिस्त्री मजदूर भी सो रहे हैं, और ये फत्तू साहब जो है ये गारा मिक्स कर रहे हैं। उनके पास मिक्स करने के लिए कुछ था नहीं था, तो गारे के अंदर जंपे लगा रहे थे ऐसे गारे को मिक्स करने के लिए। हजरत ने किसी खादिम को भेजा कि इसको इधर बुलाओ। अब वो खादिम गया बुलाने के लिए कि हजरत बुला रहे हैं। अब तो समझा मेरे से कोई गलती हुई है कि हजरत इस वक्त तो कभी नहीं बुलाते, कोई मसला हुआ है, गड़बड़ हुई है, तो थोड़ा सा डर भी गया। तो उसने बहाना थोड़ा सा किया कि ये मेरे कपड़े सारे खराब है, इस तरह मैं हजरत के पास कैसे जा सकता हूँ। तो हजरत से अर्ज कर दो कि मैं आ रहा हूँ, कपड़े जरा साफ। उसने कहा मैं जरा कोई गड़बड़ हुई है, मैं पहले सोच लूँ कि क्या गड़बड़ है, जवाब क्या देना है। तो खादिम गया, उसने कहा हजरत वो फतू कह रहा है कि कपड़े सारे खराब हैं, तो जरा मैं आ रहा हूँ थोड़ा 2-4 मिनट में। हजरत ने उस खादिम को वापस भेजा, कहो नहीं जिस हालत में है उस हालत में। अब तो फतू की जान ही निकल गई, ना मुझे समझ में आ रहा है गड़बड़ क्या हुई है, ताकि मैं एक जरा जवाब तैयार करके रखू। और हजरत फरमाया अभी आओ। फरमाते मैं हजरत के पास गया तो हजरत ने बिल्कुल मुझे सीने के साथ सीने लगा के और फिर थोड़ी देर तक दबा के रखा, और फरमाया कि अल्लाह की तरफ से दिल में ये बात आ रही थी और मैं इसको रोक नहीं पा रहा था, तो इस सिलसिले की इजाजत और खिलाफत आपको दी जाती है। तो रोने लगा, अगर ना मैंने दीन पढ़ ना मैंने कोई दुनिया पढ़ी, तो बस आपका खादिम हूँ। फरमाया कि हमारे बस की चीज नहीं है, ना हमारे घर की चीज है, अल्लाह ने दिल पर डाला, सब ये है। अब पत्तू ने हजरत की बात सुन ली, सोच में पड़ गया कि जी हजरत ये काम तो बड़ों का ही, हम क्या, मगर ये सोहबत की बरकत थी, सोहबत से अल्लाह ताला इंसान की का जो स्टेटस है उसका जो उसका लेवल है वो बढ़ाते हैं। जैसे सहाबा कराम सोबत की वजह से अल्लाह ने मकाम दे दिया, तो मकाम बढ़ जाता है। लोग हैरान हो गए कि पत्तू जहां कहीं बैठ के गुफ्तगू करता, लोगों के दिल पे असर होता, अमाल पे लोग खड़े हो जाते। जो कोई आके कहता जी दुआ कर दे मेरे लिए, दिए दुआ के लिए हाथ उठाता, अल्लाह ताला उस दुआ को कबूल कर लेता। हत्ता के लोगों ने फत्तू कहना छोड़ दिया कि ये फत्तू नहीं है, फिर लोगों ने उनका नाम साईं फतेह अली रख दिया, कि वो साउथ पंजाब का इलाका था तो वहां बुजुर्गों को साईं कहा जाता है, तो साईं फतेह अली बन गए। हमारे हजरत ख्वाजा गुलाम हबीब साहब रहमतुल्ला अलैह चकवाल वाले जो है वो फरमाते हैं बड़े उलमा जब हज पे जाते थे ना 1960s 70s में, 70s तक बल्कि 80s तक, तो मक्का मुकरमा में एक मदरसा है, मदरसा सोल्तिया, उसके बेसमेंट में उन सारे उलमा का इंतजाम होता था, बड़ा उनका ख्याल किया जाता था, और बहुत उनको तो कभी कभी 200 300 उलमा हज पे होते थे, और उन सब की अरेंजमेंट उस मदरसा सोल्तिया की बेसमेंट। तो अगर किसी को हिंदुस्तान पाकिस्तान से आए हुए बड़े हजरात से मुलाकात करनी होती थी ना, तो वो वहां चले जाता तो सारों से मुलाकात हो जाती। तो हजरत ख्वाजा गुलाम हबीब साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि मैं भी मदरसे सौदिया की उस बेसमेंट में गया, हजरात से मुलाकात कर ली, तो बड़े उलमा थे, मगर इस साल बहुत ज्यादा थे, सबका इंतजाम जमीन पे था, सब जमीन पे थे। कहते सिर्फ एक चारपाई ऊपर थी, और उस चारपाई की गिर्द ही सबका अटेंशन थी, सब उसी तरफ देख रहे थे, ऐसा लग रहा था कि इन सारे उलमा में सबसे बड़ा जो है ना वो ये चारपाई वाले, और सबकी तवज्जो इस चारपाई वाले की तरफ। या तो मैंने करीब जाके देखा तो ये साईं फतेह अली थे, कि अल्लाह ने इस सोहबत की बरकत से, मशाइख की खिदमत की बरकत से अल्लाह ताला ने मुकाम। तो सोहबत का एक फायदा ये कि इंसान नेक अमाल पे इस्तकामत आती है, एक फायदा ये है कि गुनाहों से पाक जिंदगी हो जाती है, और तीसरा फायदा ये है कि सोहबत की वजह से इंसान को अल्लाह मकाम अता फरमाते हैं। तो पक्की बात है कि नेक सोहबत जो है हासिल करने वाला, ये लोगों को जब अल्लाह की तरफ बुलाता है तो ये ज्यादा असर के साथ बुलाता है, हिकमत के साथ बुलाता है। अल्लाह ताला हमें भी ये नेक सोहबत नसीब फरमाए। आखिरी दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अनबियाए المرسلين, اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا جزاكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.